हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवा अध्याय श्लोक संख्या 28, 29, 30 एंड 31। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे, वेदे साङ्गपक्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा, देवाय तस्मे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति, गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सूते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद नवा अध्याय श्लोक संख्या 28। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुत गोस्वामी कह रहे हैं, धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान्यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववेत्। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान्यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववेत्। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान्यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववेत्। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थात वित्ति पर्क कार्य, अर्थ मतलब आर्थिक विकास, काम मतलब इच्छा पूर्ति, मोक्ष मतलब चरण मुक्ति। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था कि आप मुझे बताइए, क्या पूछा था, अपृच्छत विविधान धर्म, कि विविध प्रकार के धर्मों के विषय में बताइए। तो पहले तो उन्होंने वर्णाश्रम धर्म के विषय में बताया, आसक्ति और वैराग्य के विषय में बताया, उसके उपरांत दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्म समास व्यास योगत। दान धर्म के विषय में बताया, राज धर्म के विषय में बताया, मोक्ष धर्म के विषय में बताया, स्त्री धर्म के विषय में बताया और अंत में भगवत धर्म के विषय में बताया। यानी कि वो हमें बताया अंत में कि श्लोक में हमने पढ़ा 27 में कि किस तरह से भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ना है, कैसे भगवान को प्रसन्न करने के कार्य करने हैं, कैसे भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, कैसे भगवान की कथाओं का श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है और भगवान के साथ अपना एक योग जोड़ना है, इसको भगवत धर्म कहते हैं। जैसे भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करना, कि भगवान को प्रसाद अर्पण करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का उपवास रखना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना। इसके अतिरिक्त आगे कह रहे हैं उन्होंने क्या बताया, धर्मार्थ काम मोक्षांश्च, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष इनके विषय में बताया और सहोपायान यथा मुने। सहोपायन, सहोपायन मतलब उपायों के साथ, कि अगर ऐसा हो जाए उस समय हमारा क्या धर्म होता है, अगर हमारे पास अर्थ हो जाए तो फिर उसको हम किस तरह से दान देना चाहिए, और अगर हमारे हृदय में कोई इच्छा हो तो किस तरह, मतलब हर एक की उपाय बताए, अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो उसको, बहुत बहुत बड़ा प्रवचन दिया है भीष्म पितामह जी ने, परंतु वो यहाँ पर संक्षिप्त में है और वास्तव में विस्तृत रूप में श्रीमद् उसमें महाभारत में आता है। अगर हम कोई किसी को ये संक्षिप्त में नहीं सुनना है, अगर विस्तार से सुनना है तो वो महाभारत में देख सकते हैं। यहाँ पर तो सूत गोस्वामी संक्षिप्त में बता रहे हैं कि उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष के और उनके उपायों के विषय में बताया और क्या बताया, नानाख्यानेतिहासेषु, बहुत बहुत आख्यान मतलब इतिहास की कथाओं के पाठ, कि देखो उस राजा के साथ ये धर्म, क्योंकि अब युधिष्ठिर महाराज धर्म संकट में थे ना, उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने इतने सारे अपराध किए हैं तो उन्होंने अलग अलग इतिहास बताया कि इस राजा के साथ ये हुआ था, उसने फिर ये धर्म का पालन करने के लिए ये किया, और जितने भी इतिहास थे वो सारे बताए। वर्णयामा सत्त्ववित्, और क्योंकि वो सत्य के ज्ञाता थे, वो तत्वविद थे, इसलिए उन सारी चीजों का उन्होंने वर्णन किया। अनुवाद, तत्पश्चात उन्होंने इतिहास के उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन अवस्थाओं के वृत्ति पर कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे सत्य से भलीभांति परिचित थे। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि पुराणों, महाभारत तथा रामायण जैसे वैदिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं हैं, जो भूतकाल में कभी घटित हुई थी। यद्यपि वे किसी तिथि क्रम से नहीं घटती थी, ऐसी ऐतिहासिक तथ्य बिना किसी तिथि क्रम के ही सामान्य जनों के लिए शिक्षा प्रद होने के कारण चुन कर रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त ये घटनाएं विभिन्न लोकों या यूं कहें कि विभिन्न ब्रह्मांडों में घटित रहती हैं। इसीलिए कथाओं के वर्णनों को कभी कभी तीनों विभागों में मापा जाता है। हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले ही वे हमारे सीमित ज्ञान के अनुसार तिथि क्रम में ना हो। भीष्म देव ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को कह सुनाया। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि देखो, महाभारत, रामायण, इतिहास, उनमें ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें तिथि क्रम सीरीज में नहीं समझ में आती। कभी कोई ऐसे क्वेश्चन करते ना कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ऐसे, क्योंकि अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग समय के भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, तो उसमें थोड़ा भेदभाव होता है। कहीं पर दूसरी कथा पहले बताई जाती है, कहीं पर बाद में कुछ होता है। कैसे नारद मुनि का जन्म कभी वेदव्यास जी के जन्म, कभी अलग अलग भगवान के अवतारों की कथाएं, मतलब उनका तिथि क्रम अलग अलग होता है। कभी को डेट, जो टाइम पीरियड है ना, जो टाइम फ्रेम है, वो अलग अलग होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारी इतनी सीमित बुद्धि है कि वो सब हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो सिर्फ किससे सरोकार होना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए कि हमें ये बस इससे क्या शिक्षा देना चाहते हैं, भगवान ने ये जो लीला की है उससे हमारे लिए क्या शिक्षा प्राप्त हुई, उसकी बाल की खाल नहीं उतारनी चाहिए कि उसके बाद उससे पहले क्या हुआ था। क्योंकि भगवान को समझना इम्पॉसिबल है, भगवान की लीला को, भगवान की कथाओं को श्रवण करके आनंदित होके और शिक्षा ग्रहण करनी है, लेकिन उसके छोर को नहीं पा सकता कोई भी, ना वर्णन कर सकता है और ना ही कोई कंप्लीट श्रवण कर सकता है। तो हम श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें सिर्फ उन शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले ही वे हमारी सीमित ज्ञान के अनुसार तिथि क्रम में ना हो, भले उसकी तिथि जो है, टाइम फ्रेम जो है, वो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन उससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और युधिष्ठिर महाराज प्रश्न किए जा रहे थे, प्रश्न करते जा रहे थे, वो भी उत्तर देते जा रहे थे, और उत्तरों में जब उत्तर दे रहे थे तो नाना ख्याने इतिहासेषु, विभिन्न इतिहास के विषय में उन्हें बता रहे थे। आगे सुत गोस्वामी कहते हैं, श्लोक नंबर 29, कृपया मेरे साथ साथ रिसाइट कीजिए। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चन्द मृत्युः वांछितस्तुत्तरायणः। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चन्द मृत्युः वांछितस्तुत्तरायणः। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थित यो योगिनश्चन्द मृत्युः वांछितस्तुत्तरायणः धर्मं प्रवद्धतस्तस्य। धर्मं का मतलब है वृत्ति पर कार्य, जो धर्म होता है ना, किसी किसी ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है और शूद्र का क्या धर्म है, प्रवद्ध वर्णित करते, वो करते जा रहे थे। और ना युधिष्ठिर महाराज प्रश्न किए जा रहे थे और वो वर्णन कर रहे थे। प्रवद्ध, प्रवद्ध का मतलब होता है वर्णन करते रहे थे तस्य, उसका, जो जो पूछ रहे थे उसका। और सहकाल प्रत्युपस्थित, सहकाल और उस टाइम पर वो समय आ गया, प्रत्युपस्थित मतलब प्रकट हो गया, एक ऐसा समय प्रकट हो गया जिसकी भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे थे। मतलब वो बोले जा रहे थे और अचानक से उसने देखा कि सकाल प्रत्युपस्थित, एक काल उपस्थित हो गया, कौन सा, यो योगी नश्चन्द मृत्यु हो, यो योगिनस, यो मतलब जो है, योगी ना मतलब योगियों के लिए छंद मृत्यु, इच्छित समय में मृत्यु कराने का, यानी कि जो योगी छंद मृत्यु मतलब जिनको ये अपनी मृत्यु पर ये कंट्रोल होता है, योगी जन होते हैं ना वो अपनी इच्छा से मरते हैं। छंद मृत्यु मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जिनकी मृत्यु होती है उनको छंद मृत्यु कहते हैं। और वो जो योगी जन होते हैं वो क्या करते हैं, एक समय की प्रतीक्षा करते हैं, यो योगी नश्चन, वो उस एक समय एक अवसर की प्रतीक्षा करते हैं जिसमें वो सोचते हैं कि इसमें मुझे मृत्यु प्राप्त करनी है, इसमें मुझे शरीर छोड़ना है। वांछित तुत परायण, उनकी इच्छा होती है, वांछित मतलब उनके द्वारा इच्छा ये होती है, तू मतलब लेकिन, उत्तरायण वह अवधि जब सूर्य उत्तरी क्षितिज में रहता है। योगी जन जो होते हैं जो अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्यागते हैं वो उत्तरायण समय का प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ पर ये समझने की बात है कि काल भी अपना प्रभाव देता है। आजकल काल को कोई नहीं देखता, बस हर समय कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं लोग कोई, लेकिन काल जो है हर काम में काल अपना प्रभाव देता है। अगर समय शुभ होता है तो कोई भी आप कार्य करते हो उसमें आपको लाभ होता है। अगर समय शुभ नहीं होता है, अशुभ समय में किया गया कार्य हमेशा हानि पहुंचाता है। तो सबसे जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कार्य जो हम करते हैं ना वो है शरीर का त्याग। बाकी जितने आप कार्य करते हो वो उस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है जीवन में कि समय, वो समय जिसमें हम शरीर का त्याग करते हैं, क्योंकि उस समय ये डिसीजन होने वाला है कि आपको नेक्स्ट बर्थ कैसा होगा। आप देवताओं के लोक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, ब्रह्मलोक में जाओगे या भगवान के गौलोक वृंदावन में जाओगे या गटर का कीड़ा बनोगे, उस समय ये निश्चित होता है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो समय है वो क्या है, जब शरीर को त्यागता है कोई। तो यहाँ पर योगी जन शरीर को किस समय त्यागते हैं ये बताया जा रहा है, वांछित उत्तरायण, उत्तरायण में वो शरीर त्यागने की इच्छा करते हैं। उत्तरायण कब होता है, जब मकर संक्रांति के दिन, यानी 14 जनवरी के बाद। 14 जनवरी के बाद क्या होता है, सूर्य उत्तरायण में चला जाता है, उससे पहले दक्षिणायण में होता है। तो योगी लोग दक्षिणायण में शरीर नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो समय शुभ नहीं होता है। उनकी इच्छा होती है कि वो जब सूर्य उत्तरायण में आए तब हम शरीर छोड़ें। भीष्म देव महान योगी हैं, वो भी उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, साथ साथ में यह शुभ समय उनको चाहिए था जब कृष्ण सामने हो और भीष्म पितामह एकटक भगवान श्री कृष्ण को निहारते रहे, इतना शुभ समय। इसी कह रहे हैं सुत गोस्वामी, धर्मं प्रवद्धतस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थित कि धर्म के ऊपर प्रवचन करते 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 वो समय आ पहुंचा जब भगवान उनके सामने थे। उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण दिशा में जा रहा था। अब देखो युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? एकादशी के दिन, जिस दिन गीता जयंती थी ना, गीता जयंती के दिन युद्ध स्टार्ट हुआ। 18 दिन युद्ध चला, तो 18 दिन के बाद जो अश्वत्थामा ने सारे बच्चों की हत्या की थी ना, लगभग वहां पर पौष की अमावस्या आ गई थी। और फिर कुछ काल बीता, और फिर कुछ काल बीतने के बाद समझो माघ, माघ शेष आ गया, और फिर कुछ समय प्रवचन भी किया उन्होंने। और इस तरह के इतना करते करते प्रवचन करने के बाद सकाल प्रत्युपस्थित, उस समय वो समय आ गया जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी उत्तरायण समय भी आ गया और सामने कृष्ण उपस्थित थे। तो यो योगी न छंद, यानी कि जिस तरह से योगी किसी खास समय का इंतजार कर रहे होते थे, उसी तरह से भीष्म पितामह भी जिस समय का इंतजार कर रहे थे वो आन पहुंचा। अनुवाद, जब भीष्म देव वृत्ति पर कार्यों का वर्णन कर रहे थे तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार उपर्युक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोक को जा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 8.24 में कहा गया है, क्या भगवान कहते हैं चैप्टर 8 वर्स नंबर 24 में, अग्नि जो तेरा शुक्ल क्षणमासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदोजना। अर्थात जो ब्रह्म ब्रह्म विदोजना, जो पर ब्रह्म को जानते हैं, वे अग्नि ज्योतिर शुक्ल, अग्निदेव के प्रभाव में, ज्योति मतलब प्रकाश में, शुक्ल मतलब दिन के शुभ समय में, शुक्ल पक्ष में, या क्षण मासा उत्तरायण, जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 महीनों में, तत्र तत्र प्रयाता गच्छन्ति, उन 6 मासों में इस संसार से प्रयाण करते हैं, शरीर का त्याग करते हैं और ब्रह्म ब्रह्म वो फिर वो उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो पर ब्रह्म के विषय में जानते हैं। और वो समय इतना शुभ होता है कि जब वो इस समय यदि अपने प्राण त्यागते हैं, शरीर त्यागते हैं, तो अवश्य पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। उसी के विषय में श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि 8.24 में कहा गया है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, सामान्यतः अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण में होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं और इस प्रकार वैकुंठ लाभ करते हैं। वेदों में इस काल को शरीर त्याग के लिए शुभ माना जाता है और सिद्ध योगी इसका लाभ उठाते हैं। योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिससे इच्छानुसार शरीर का त्याग किया जाए जा सके। यानी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे योग की सिद्धि क्या है कि आपको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए, श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त हो जाए कि आप अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर सको। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर को सुडोल बनाने के लिए योग नहीं है। योग इसलिए किया जाता है ताकि हमारा भगवान के साथ संबंध निर्माण हो और हम ऐसी सिद्धि प्राप्त करें कि हमें मरना आए, कि किस तरह से मरना, कब शरीर को त्याग आ जाए कि हम डायरेक्ट से भगवान के पास जाएं। योगी किसी भी लोक में तुरंत ही किसी भौतिक ज्ञान के बिना पहुंच सकते हैं। योगी ऊंचे से ऊंचे लोकों में अल्प समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन भौतिकतावादी के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। यदि किसी उच्च उच्चतम लोक तक पहुंचने का प्रयास किया भी जाए तो लाखों मील प्रति घंटे की चाल होने पर भी वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं साधारण लोग को है ना एक तो दूसरे लोकों में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा करे भी कोई तो क्या करेगा, उसकी स्पीड क्या हो, अगर यदि लाखों माइल प्रति घंटे की रफ्तार से वो चले तो भी वहां तक पहुंचने से लाखों वर्ष लग जाएंगे। ये एक विभिन्न विज्ञान है और भीष्म देव इसका सदुपयोग करना जानते थे। भीष्म पितामह को पता था कि मुझे कब और किस तरह से शरीर त्यागना है कि मैं वापस से कभी भी संसार में ना आऊं और भगवान के धाम को प्राप्त करूं। वे अपना शरीर छोड़ने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे और वह स्वर्णिम समय तब उपस्थित हुआ जब वे अपने पौत्र पांडवों को उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्यात्मा पांडव तथा भगवान व्यास आदि महर्षियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की तैयारी की। अब तो इतना सुंदर समय है, एक तो सूर्य भी उत्तरायण में आ गया है और उससे बढ़कर वो भगवान के विषय में बोल रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने हैं, महर्षि वेदव्यास उनके समक्ष हैं, इतने सारे ऋषिगण उनके सामने हैं, तो वो अब क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपने शरीर को त्यागने की। और अब तो क्योंकि वो इतने सारे विविध धर्मों के विषय में बोल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी वाणी को समेट लिया। वाणी जो नाना इतिहास कहने में फैली हुई थी, अब भीष्म पितामह ने उसको समेट दिया, मतलब बोलना छोड़ दिया नहीं, बोलना शुरू किया केवल कृष्ण के विषय में और अपना मन कृष्ण में लगाया। उसके विषय में कहते हैं सुख गोस्वामी, कृपया मेरे साथ सत पढ़िए। तदोपसंहृतगिरः सहस्रिणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्वील सत्पीत पटी चतुर्भुजे पुरस्थिति नीलित दीघ्र धारयत् तदोपसह हृतगिरह सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्वील सत्पीत पटी चतुर्भुजे पुरस्थिति नीलित दीघ्र धारयत् तदोपसं सहृत्य गिरह सहस्रणी। तदोप तद मतलब उस समय, उपसंहृत्य मतलब हटाकर। अब सारे जो वो सोच रहे थे ना इतिहास के बारे में, धर्मों के बारे में, उनसे अपने मन को हटाकर और गिरह मतलब वाणी को, अपनी वाणी को भी सारा ये जो बोल रहे थे विभिन्न धर्मों के विषय में, विभिन्न चीजों के विषय में, राजधर्म दान धर्म इत्यादि ये सब बता रहे थे, उन सब से हटाया मतलब समेटा। संहृत्य मतलब उसको हटा दिया, समेट लिया। सहस्रणी, यहाँ पर सहस्रणी भीष्म पितामह को कहा गया है। सहस्रणी का मतलब है जो श्री प्रभुपाद ने लिखा है, भीष्म जो हजार विद्याओं तथा कलाओं में निष्णात थे। अब अनेक मतलब भीष्म पितामह इतना उनका एक्सपीरियंस था अपनी लाइफ का, इतनी एक तो उनकी एज थी, ऊपर से इतनी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, अपने जीवन में सीखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया, पूरा जीवन वो सीख रहे थे, बहुत कुछ उन्होंने सीखा। अब उनके पास इतना ज्ञान था, यानी यहाँ पर बता रहे जो हजार विद्याओं, हजार टाइप की उनके पास विद्या थी और कलाओं में निष्णात थे, बहुत सारी उनके पास कलाएं थी। और यहाँ पर सहस्रिंग का एक मतलब ये भी होता है, सह मतलब सो और सहणी का मतलब होता है रथी, जो महारथी होते ना, एक अकेले भीष्म 100 महारथियों को अकेले कंट्रोल कर सकते थे, इतना भीष्म पितामह के अंदर बल था, इतना ज्ञान था, इतना उनके पास इतनी कलाएं थी। तो उन्होंने क्या किया, अब क्योंकि वो समय आ गया जिसका वो इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने बाकी सब काम छोड़ दिए, अपनी वाणी को कंट्रोल किया और अपने मन को एकाग्र किया। किस तरह, വിമുക്ത സംഗം മന ആദിപു വിമുക്ത വിമുക്ത ഇനി ഭഗവാൻ കെ അന്ദർ മൻ ഉന്നോനെ കൈസെ ലഗായ ഉൻകാ മൻ സംസാര കി സമസ്ത ആസക്തിയോ സെ മുക്ത ഥാ വിമുക്ത സംഗം ജബ് സംസാര കി ആസക്തി ഹോതി ഹൈ തോ മൻ ജോ ഹൈ വോ ഭഗവാൻ മേ നഹീ ലഗ്താ ജൈസെ ആസക്തി സമാപ്ത ഹോ ജാതി ഹൈ ഭഗവാൻ കെ ശ്രീ ചരണോ മേ ആനന്ദ മൻ ജോ ഹൈ വോ ആനന്ദിത ഹോനെ ലഗ്താ ഹൈ ശ്രീ ചരണോ കാ ധ്യാന ഹോനെ ലഗ്താ ഹൈ ഔർ ഇസ് യഹീ കാര്യ വിമുക്ത സംഗം മന ആദി പുരുഷ ഔർ കഹീ ഭീ മൻ നഹീ ജാ രഹാ ഥാ ബസ് ഭഗവാൻ കെ ജോ सामने भगवान खड़े हुए थे, भगवान के मुख से हट नहीं रहा था, भगवान में लगा हुआ था और कहीं भी नहीं जा रहा था। हमारा मन है ना, वो टिकता नहीं है ना, एक जगह पर टिकता नहीं है। लेकिन एक बार हम माला कर रहे होते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे होते, भगवान में क्यों इसका, क्योंकि विमुक्त संगम नहीं है ना, क्योंकि भौतिक वस्तु में इतनी आसक्ति है कि उनके विषय में सोच आ ही जाती है। लेकिन उन्होंने अपने मन को बिल्कुल भगवान के अंदर केंद्रित कर दिया, वाणी को समेट लिया कि अभी तुम्हें कृष्ण नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलना है। और मन आदि पुरुष, आदि पुरुष मतलब भगवान जो है, आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने कहा, पहले ही बता दिया था उन्होंने, ईश्वर भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमा, कि वही आदि पुरुष है। यहाँ पर भीष्म पितामह हमें शरीर त्यागने की कला सिखा रहे हैं। लोग यहाँ पर आजकल ध्यान करना, इस कलयुग में ध्यान बिल्कुल खत्म हो गया है, लोग को ध्यान का मतलब ही नहीं पता है। ध्यान वास्तव में ऐसा नहीं होता, लोग क्या करते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, शरीर को सीधा रखते हैं और हम देखने वाले क्या लगते, वाह क्या ध्यान कर रहा है। लेकिन आंख बंद कर देना, शरीर को सीधा रखना, ये ध्यान थोड़े है। ध्यान का वास्तविक मतलब है मन को भगवान में लगाना। यदि भगवान के अंदर मन लगा हुआ है तो वो परफेक्ट ध्यान है। आज लोग से पूछो कि आप ना सीधे बैठ के आंखें बंद करते हो तो किस पर ध्यान लगाते हो, तो बोलते हैं कि हम ज्योति पर ध्यान लगाते हैं। ज्योति किधर से आई, केवल कल्पना मात्र से है, वो कोई ज्योति होती उनके माइंड में नहीं होती है, वो अपनी एक कल्पना करते हैं कि ये ज्योति है उस पर मुझे ध्यान लगाना है। ये भी पता नहीं है कि वो ज्योति आती किधर से है, वास्तव में कोई ज्योति पुंज होगा जिससे कि ये ज्योति निकल रही है, कहीं तो सूर्य होगा जिसका ये प्रकाश है, कुछ भी उनको पता नहीं होता है। अब देखिए शास्त्र में वेद व्यास जी ने कहीं पर ध्यान लगाने के लिए नहीं कहा, सिर्फ भगवान के अंगों को छोड़कर और किसी के ध्यान के विषय में नहीं बताया। ये यहाँ पर भीष्म पितामह हमें सिखा रहे हैं कि ध्यान कहाँ करना है, आदि पुरुष। और आगे बता रहे हैं, कृष्णील सत्पीत पटे चतुर्भुजे, कि वह कृष्ण जो पीतांबर धारण किए हुए हैं, पीतपटे जो पीतांबर धारण किए हुए हैं और उनका पीतांबर अभी जो हवा लग रही है उसके कारण लहरा रहा है, और उन्होंने चतुर्भुजी स्वरूप धारण किया हुआ है, उस पर एक टिक उन्होंने ध्यान लगाया। कोई निराकार का ध्यान लगाने के लिए नहीं सिखा रहा, हमारा शास्त्र हमें बताता है कि भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए, भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, भगवान के मंद मंद मुस्कुराते हुए मुख कमल का ध्यान करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र कहता है ध्यानावस्थित तत्कटेन मनसा पश्यन्तियं योगिनो। ध्यानावस्थित, अवस्थित मतलब एकाग्र है, उसके ध्यान के अंदर एकाग्र है। तद्गतेन मनसा मतलब भगवान में उसका मन लगा हुआ है, उनका ध्यान करते करते पश्यन्तियं योगी, योगी जन उनका ध्यान करते हैं। किनका करते हैं, पहले बता दिया, यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुत, जिसका ध्यान ब्रह्मा जी करते हैं, जिसका ध्यान वरुण देव करते हैं, जिसका ध्यान जो है रुद्र शिव जी करते हैं और मरुत करते हैं। ऐसे भगवान के अंदर ध्यान, वही भगवान जो है वो ध्यान का लक्ष्य है। वेदों में जिनकी कीर्ति का वर्णन है, किसका वर्णन है? भगवान का। वेदे सांग पद क्रमोपनिषदे गायंतियम सामगा। सामवेद को जाने वाले लोग जिनकी कीर्ति गाते हैं और ब्रह्मा रुद्र मरुत जिनके स्वरूप का ध्यान करते हैं और यस्यांतम न विदो सुरासुर गणा। भगवान स्वयं बताते हैं 10.2 में कि मैं वही हूँ। नमे विदु सुर गणा प्रभवम न महेश्वर अहमादि हि देवानां महर्षियां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उपस्थिति या मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षि गण जानते हैं। नमे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षयः। न देवता जानते हैं मेरी उत्पत्ति को और न ही महर्षि जानते। क्यों नहीं जानते हैं? अहम आदिर ही देवानाम, मैं ही सभी प्रकार से देवताओं का आदि हूँ। महर्षि नाम च सर्वशा, महर्षियों का भी कारण स्वरूप मैं ही हूँ। तो वास्तव में यस्यांतम न विदो सुरा सुरगणा देवाय तस्, इसी देव भगवान का ध्यान करना होता है, उसी भगवान के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। वास्तव में ध्यान करना है, अगर ध्यान करने के योग्य कोई है तो भगवान श्री कृष्ण है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है आंख खोल कर करो या आंख बंद करके करो, लेकिन ध्यान किसका होना चाहिए? भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, उनकी रास लीला का, उनकी बाल लीलाओं का, उनके रास नृत्य का, गोवर्धन धारण करने का, बंसी बजाने का, गौवा चराने का, ये ध्यान है। इसको तो ध्यान कहते हैं। भीष्म पितामह भगवान की उस भौतिक समस्त आसक्ति से मुक्त है और आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण के फड़फड़ाते हुए पीताम्बर और शत्रुभुजी का ध्यान कर रहे हैं और पुरस्थिति नीलित दृग। पुरस्थिति का मतलब है वो भगवान जो साक्षात उनके सामने खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, भीष्म पितामह को दर्शन दे रहे हैं और स्वयं भी उनका दर्शन कर रहे हैं। वो सामने उपस्थित भगवान को अमीलित दृग का मतलब है कि वो भीष्म पितामह, अमीलित मतलब खुली हुई, मिलित मतलब बंद और अमीलित मतलब खुली हुई। क्या खुली हुई? दृग मतलब आंखें। वो एक टक खुली हुई आंखों से भगवान श्री कृष्ण का व्यधारयत, स्थिर अपने मन को, अपनी वाणी को और अपनी इंद्रियों को भगवान के अंदर स्थिर कर दिया। अब वो अपने मन को कहीं नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि विमुक्त संगम मन आदि पुरुष, अपनी मन को भगवान के अंदर केंद्रित कर दिया है। और गृह जो उनका ग्रह गृह मतलब उनकी जो वाणी है उसको भी भगवान के अंदर केंद्रित किया, मन को भी भगवान के अंदर केंद्रित कर दिया और नेत्रों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा पूरा का पूरा भगवान के अंदर डूब गए हैं। अब भगवान के अतिरिक्त और उन्हें कुछ भी ध्यान में नहीं, एक टक खुली आंखों से वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और कितनी सुंदर ये, कितना सुंदर क्षण है, कितना सुंदर काल है जिसमें भीष्म पितामह जो है वो अपने मृत्यु का के लिए बस अपने शरीर को त्यागने वाले। कितनी सुंदर, कितना उनका सौभाग्य है। इससे अतिरिक्त और किसी चीज की इच्छा नहीं होती एक भक्त की कि जब मेरी मृत्यु आए उस समय भगवान सामने हो, मेरा मन, मेरा वचन, मेरा कर्म सब कुछ भगवान के अंदर केंद्रित हो। इससे बड़ा सौभाग्य और कोई हो ही नहीं सकता। अनुवाद। तत्पश्चात उस व्यक्ति ने जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्ति पतियों की रक्षा कर चुका था। सहस्रणी इस शब्द का मतलब बता रहे हैं आचार्य प्रभुपाद जी, जो कि विभिन्न बहुत सारे विषयों पर बोल सकता था, हजारों युद्धों में लड़ चुका था, हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था। उन्होंने क्या किया, संहृत्य गिरा, अपनी वाणी को बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्णतया मुक्त होकर अन्यत्र से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चार भुजाओं वाले थे और चमचमाते हुए पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए थे। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अपने भौतिक शरीर त्याग में भीष्म देव ने मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया। मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षण करता है वह अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। अतएव यदि कोई परमेश्वर के विचारों में लीन रहता है तो वह अवश्य ही भगवान के पास जाता है। श्री प्रभुपाद जी ने अत्यंत सुंदर रीति से समझाया है कि मरते समय हम जिस भी वस्तु की ओर आकर्षित होंगे तो नवीन जो जीवन होगा उसका शुभारंभ वहीं से होने वाला है। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के विषय में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर अतएव यदि कोई परमेश्वर के विचारों में लीन रहता है उस समय तो वह अवश्य ही भगवान के पास जाता है। और इसकी पुष्टि कहाँ हुई है, श्रीमद् भगवद गीता 8.5 से लेकर 8.15 तक हुई है और उन्हीं के विषय में यहाँ श्रील प्रभुपाद जी समझाएंगे। और हम गीता से देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 5 भगवान बताते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यन्त्रसंशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्। भगवान कहते हैं अंत समय में यदि माम एव, ये एव शब्द है ना, उसको हमें समझना है। भगवान ने कहा केवल मेरा, एव मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान का, निश्चय ही इसके अतिरिक्त और किसी का। स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर भगवान का स्मरण करेंगे और कलेवर को छोड़ेंगे अपने शरीर को, यह प्रयाति समाधान। भगवान ने बोला कि अगर ऐसा कोई करेगा तो फिर वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा। याति नास्त्यत्र संशय, प्राप्त करेगा इसमें कोई संशय नास्ति संशय, इसके अंदर कोई संशय नहीं है, इसके अंदर कोई संदेह मत करो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं और जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। आगे श्लोक नंबर 6 के विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ति कलेवरम तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस वस्तु का स्मरण करेंगे कब, त्यजत्यन्ति कलेवरम, अपने कलेवर को त्यागते समय, तम समय वैति कौन्तेय, भगवान कुंती पुत्र को कह रहे हैं हे कुंती पुत्र उसी स्वभाव को आप प्राप्त करोगे सदा तद्भाव भाविता, जिस वस्तु के विषय में आपने अंत समय में स्मरण किया है, यानी शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। आगे श्लोक नंबर 7 में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामेवैषस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए समस्त काल में, यानी कि अब ये तो पता नहीं है ना कि कौन सा समय अंत समय होगा, और दूसरा ये कि अंत समय में वही याद आएगा जो पूरा जीवन याद किया। तो भगवान बताते हैं तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्ध च, ये जीवन की कला सिखा रहे भगवान। बोलते हैं जब तक जीना नहीं आया तो मरना क्या खाक आएगा, जीते समय क्या करो, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। युद्ध मन अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन हर क्षण में मुझे याद करो, मेरा स्मरण करो, मेरे पवित्र नाम का जप करो और मेरी कथाओं का श्रवण करो। और ऐसे क्या होगा, मई अर्पित मनोबुद्धि, धीरे 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 तुम्हारा मन जो भौतिक वासनाओं से गिरा हुआ है, तुम्हारी बुद्धि जो भौतिक विचारों से भरी हुई है, वो सब मुझ में टिक जाएंगी और मामी वैशस्य संशय, और तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अतएव ही अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। श्लोक नंबर 8 में भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसानान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पाठानुचिन्तयन्। कितना सुंदर भगवान बता रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो अभ्यास करता है पूरा जीवन योग के अंदर युक्त रहने का, यानी मेरे अंदर ध्यान टिकाने का, किससे, चेतसा, चेतसा मतलब मन और बुद्धि से, जो कंटिन्यूअस मेरे विषय में सोचने का, मेरे साथ योग अपना बनाने का युक्त रहता है, सदैव उसमें लगा रहता है। नान्य गामिना न अन्य गामिना मतलब और किधर भी अपने मन अपने बुद्धि को जाने नहीं देता है, केवल मेरे अंदर टिकाता है। परमं पुरुषं दिव्यम, भगवान अपने विषय में बता रहे हैं कि मैं परम पुरुष हूँ, दिव्य हूँ। भगवान अपने आप को परमम पुरुषम कह रहे हैं, भगवान नहीं बोल रहे हैं कि निराकार हूँ आप ज्योति के ऊपर ध्यान लगाओ, नहीं, बोलते हैं सदैव मुझ परम पुरुष के ऊपर ध्यान लगाओ। दिव्यम, मैं दिव्य हूँ, पुरुष हूँ मगर मैं साधारण नहीं हूँ, मैं दिव्य हूँ। और याति पाठानुचिंतयन, इसलिए ये पाठ तुम्हें उसी का चिंतन, अवश्य उसी का चिंतन करना चाहिए। और ऐसा अगर कोई कंटिन्यूस करेगा, अपने मन को इधर उधर नहीं जाने देगा, तो अवश्य ही मुझको प्राप्त होगा। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये पाठ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगा कर रख कर अविचलित भाव से भगवान के रूप में, भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है। भगवान श्री कृष्ण कितना चतुराई से बोलते हैं कि भगवान के रूप में ध्यान करो तो मेरा ध्यान करो, परमं पुरुषं दिव्यं, तो ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। आगे श्लोक नंबर 9 में कहते हैं, 8.9 में भगवान कहते हैं कविं पुराणं अनुशासितारं अनेरया समनुस्मरेध्य सर्वस्य दातारमचिंत्य रूपं आदित्यवर्णं तमस पुरस्तात्। भगवान मनुष्य को परम पुरुष का ध्यान करने की विधि बता रहे हैं। क्या है विधि, कविं पुराणं अनुशासितारं, यानी कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान कैसे कहे, कि वे सर्वज्ञ है, पुरातन है, नियंता है, लघुतम से भी लघुतम है, सबों के पालक है, समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं, अचिंत्य तथा अनित्य पुरुष के, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में भगवान का ध्यान करना चाहिए। वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, दिव्य स्वरूप है। उसके बाद मृत्यु के समय कैसी अवस्था होनी चाहिए, क्या होता है और योगी जन क्या करते हैं, उसके विषय में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 10 में देखिए प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतम परम पुरुषम उपेत दिव्यम। अर्थात मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचलित मन से, यानी प्रयाण काली मनसा चलेना, जिसका मन विचलित नहीं होगा, और भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, अपने प्राण को योग शक्ति द्वारा क्या करेगा, भ्रुवोर मध्य प्राणाम आवेश, यानी भवों के बीच में अपने प्राण को टिकाता है और पूर्ण योग से, उस समय पूर्ण भक्ति में जब वो युक्त हो जाता है, भक्त्या युक्तो योग बले, भक्ति के अंदर युक्त हो जाता है और भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। सतम परम पुरुषम उपेत दिव्यम, वो दिव्य भगवान को प्राप्त करता है। श्लोक नंबर 11 में कहते हैं, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति अत्यतय वीतराग, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। अर्थात समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, इंद्रिय जितनी क्रियाएं हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, हाथों से कार्य कर रहे हैं, कर्म इंद्रियों से और ज्ञान इंद्रियों से, उनसे विरक्ति को योग की स्थिति कहते हैं। जब योग अवस्था में आते हैं तो इंद्रियां जो हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं, और इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर उपस्थित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। अब भगवान यहाँ पर श्लोक नंबर 12 में बता रहे हैं कि योग में स्थित कैसे किया जाता है। शरीर को एकदम सीधा, उसकी सारी इंद्रिय जो क्रिया है वो सब रोक कर हृदय मन को बिल्कुल टिका देना है हृदय के अंदर भगवान के चरणों पे, और प्राण वायु को सिर पर, यानी कि प्राण वायु जो है पान वायु और ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं, और उसको सिर के ऊपर स्थापित करना, और मनुष्य अपने को योग में स्थापित कर देता है, यानी कि अब वो योग स्थिति में आ गया। और उसके बाद क्या श्लोक नंबर 11 है, यदक्षरम वेद वेदो वदन्ति विशन्ति अद्य तयो वीतराग, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। यानी यदक्षरम वेद वेदो, जो वेदों की ज्ञाता है, और वदन्ति विशन्ति, वो क्या करते हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम का संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत का सेवन करना होता है। अब भगवान आगे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ करता है। अब श्लोक नंबर 12 से भगवान हमें वो विधि बता रहे हैं जिससे जीव को मुक्ति मिलती है, और भगवान कहते हैं, सर्व द्वाराणि संयम्य मनोवृद्धि निरुद्ध्य च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणम् आश्रितो योगधारणम्। अर्थात सर्व द्वाराणि संयम्य, यानी समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को क्या कहते हैं, संयम, मनोवृद्धि निरुद्ध्य च, इसको योग कहते हैं, और योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है, और मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणम्, इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करने से मनुष्य अपने को योग में स्थित कर सकता है। और श्लोक नंबर 13 में भगवान कहते हैं, ओम इत्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। ओम इत्येक्याक्षरम ब्रह्म, यानी इस योग अभ्यास में स्थिर होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन, अभी देखो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ओम इत्येक्याक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुस्मरण, भगवान कहते स्मरण मेरा करना है उस वक्त भी, ओम का उच्चारण करो और अगर ओम का उच्चारण करते करते साथ में मेरा स्मरण करता है, यह प्रयाति त्यजन देहम, तो जो इस प्रकार से अपने देह को त्याग करता है सयाति परमाम गति, वो निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त होगा और आध्यात्मिक लोकों को प्राप्त होगा। और आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 14 में अत्यंत सुंदर बात बताए, भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगी अनन्य चेता सततम। यहाँ पर भगवान ने दो चीजें बताई हैं, एक तो अनन्य चेता, दूसरे किसी का भी नहीं, चित्त केवल भगवान के अंदर, चित्त मतलब मन और बुद्धि को अनन्य चेता। और किस टाइम पर? एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, कितने घंटे? भगवान ने कहा सततम 24 घंटे। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश, नित्यश एक दिन 24 घंटा नहीं, नित्य रूप से डेली 24 घंटे जो भगवान कहते हैं यो माम स्मरति, जो मुझे याद करता है, तो उसके लिए क्या होगा? तस्याहं सुलभः पार्थ, उसके लिए तो मैं उसी टाइम बहुत सुलभ हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं वेदेषु दुर्लभः अदुर्लभ आत्मभक्त, जो आत्मभक्त है, जो अनन्य चित्त से कंटिन्यूस भगवान को स्मरण करते हैं, सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना, और उनके लिए मैं बहुत ज्यादा सुलभ होता हूँ जो कंटिन्यूस योग में स्थित होते हैं और मेरी भक्ति में प्रवृत्त होते हैं। और सबसे सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं श्लोक नंबर 15 में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतिं। मामुपेत्य पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त कर ले और दोबारा जन्म हो, वो भी कहाँ? दुःखालयम् अशाश्वतम्, इस दुखों भरे अशाश्वत जगत में। नाप्नुवन्ति महात्मानः, ऐसा नहीं होता, महात्मा लोग को ऐसा वापस जन्म नहीं मिलता दुखों वाला, फिर वो कहाँ जाते हैं? सौसिद्धिम परमाम गति, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है और उनको परम गति प्राप्त होती है, अर्थात हाईएस्ट स्टेज जो है, यानी मुझे प्राप्त करना, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। और जब एक बार मुझे कोई प्राप्त कर लेता है तो पुनः इस संसार में वापस नहीं लौटना पड़ता। अविश्ल रूपा जी कहते हैं श्री भीष्म देव को इच्छा अनुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त थी और मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने अभीष्ट श्री कृष्ण को पाकर वे धन्य थे, अतः उन्होंने अपने खुले नेत्र उन पर टिका दिए। वो कंटिन्यूस भगवान को देख रहे थे, क्या मृत्यु है, ऐसी मृत्यु पे तो हजार जीवन कुर्बान है कि वो सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पीताम्बर को फहरा रहे हैं, उन पर नजर लगी हुई है, टिकी हुई है, और भीष्म देव अपने प्राण को त्यागने की तैयारी कर रहे हैं। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण श्री कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे, क्योंकि वे शुद्ध भक्त थे, अतएव उन्हें योग की विशिष्ट क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर फिर से समझा रहे हैं कि आप शुद्ध भक्त कोई होता है तो उन्हें योग की सारी क्रियाओं की, योग की मुद्राओं की आवश्यकता नहीं थी उनके लिए। शुद्ध भक्तों के लिए सबसे बड़ा योग ये है कि उनका मन, उनका चित्त, उनका ध्यान, उनकी वाणी और उनके नेत्र उनके भगवान के, भगवान में केंद्रित हो, भगवान पे टिके हुए हो। सबसे बड़ा योग तो यही है, योग का मतलब ही है भगवान के साथ संबंध जोड़ना, और साक्षात भगवान खड़े हैं, भीष्म पितामह उनको देख रहे हैं। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अतः उन्हें योग की विशिष्ट क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग पर्याप्त है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इस कलयुग में योग तो कोई कर भी नहीं सकता, योग को कौन, इतने योगी जन योग सालों हजारों सालों तक करते रहे, हमारे पास ना इतना समय है और ना ही इतना धैर्य कि हम अपने योग को टिका सके, तो भक्ति जो है वो पर्याप्त है। अतः भीष्म की हार्दिक इच्छा भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखने की थी जो परम प्रिय थे, और भागवत कृपा से श्री भीष्म देव को अपनी अंतिम अवस्था में यह सु अवसर प्राप्त हुआ। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, विशुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्षयेवाशुभता युधश्रम निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यं विसृजन् जनातनम्। विशुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्षयेवाशुभता युधश्रम निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। विशुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्षयेवाशुभता युधश्रम निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। विशुद्धया धारणया हता, विशुद्धया मतलब शुद्ध हो गए। अब जब भगवान के ऊपर नजरें टिकी हुई हैं, बुद्धि भगवान के अंदर लगी हुई है, ध्यान पूरा भगवान के, जुबान से केवल भगवान का गुणगान, तो विशुद्ध हो गए। अब मतलब पाप उन्होंने कोई किया नहीं था यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं है वो पापों से मुक्त हो गए। यहाँ पर वो पाप का मतलब वो जो कृष्ण प्राप्ति में बाधा थी, यानी दुर्योधन आदि का जो संग उन्होंने किया था, जिस उसका जो अपराध लगा था उनको, वो सारा का सारा समाप्त हो गया, विशुद्ध हो गए थे। धारणया हताशुभ, जो अशुभ था संसार के अशुभ गुणों को जिसने कम कर दिया, यानी कि वो भगवान का उनके सामने होना, उससे क्या होगा, जब वो भगवान का ध्यान कर रहे तो सारे अशुभ गुण जो थे वो सब समाप्त हो गए। और क्या हुआ, तदीक्षये वाशु गता युधश्रम, उसी इक्षया मतलब देखने से एवं केवल आशु तुरंत ही गता गए थे युधश्रम, तीरों से थकान, जो तीरों मतलब तीर लगने से उनको जो दर्द हो रहा था, वो तो उस जिस समय कृष्ण ने उनको शुरू में देखा था ना, जब कृष्ण उनके सामने आए थे उसी समय दर्द चला गया था, लेकिन अब तो उनको सुकून मिला। तदीक्षये वाशु गता युधश्रम, युद्ध की थकान खत्म हो गई और आनंद महसूस कर रहे थे, उनको आनंद का अनुभव हो रहा था। निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम, इंद्रियों की का भ्रमण जो था वो समाप्त हो गया, यानी कि इंद्रियां जो है, आंख कान नाक त्वचा, ये सब अब कान जो है वो कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाह रहे थे, जुबान कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ बोलना नहीं चाह रही थी, आंखें कृष्ण के अतिरिक्त कुछ देखना नहीं चाह रही थी, मन कृष्ण के अतिरिक्त और किसी में नहीं आ रहा था, केवल सब कुछ भगवान में टिका हुआ था, भगवान का दर्शन कर रहे थे। और तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम, वजन्यम विसृजन यानी शरीर को छोड़ने के लिए उस समय वो क्या करने लगे, विसृजन जनार्दनम, भगवान का वर्णन करने लगे। अनुवाद, शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अकल्याण से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से विमुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप ठप्प हो गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवन के नियंता की दिव्य स्तुति की। अब वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दना, जो भगवान है जो संपूर्ण जीवों की नियंता है उनकी स्तुति करने लगे। श्रील प्रभुपाद जी सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। ये शरीर माया का बना हुआ है, माया ने हमें उपहार दिया है। भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने का कारण भगवान के साथ नित्य संबंध को भूल जाना है। वास्तव में जीव का भौतिक शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, वो तो भौतिक है और जीव आध्यात्मिक है, लेकिन क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं, इसलिए शरीर को अपना स्वरूप मान लेते हैं। भीष्म देव जैसे भगवत भक्त के लिए यह माया भगवान के आते ही दूर हो गई। जैसे भगवान के दर्शन हुए तो उन्हें आत्म साक्षात्कार होने लगा, अपना भगवान के साथ संबंध याद आ गया और भगवान श्री कृष्ण सूर्य के सदृश है और बहिरंगा भौतिक शक्ति अथवा माया अंधकार के तुल्य है। सूर्य की उपस्थिति में यह संभव ही नहीं है कि अंधकार रह जाए। यदि सूर्य चाहे ना कभी कि मैं थोड़ी देर के लिए अंधकार को देखना चाहता हूँ, तो भी वो नहीं देख सकते, क्योंकि भले वो कितने ही अंधेरे कोने में जाकर छुपेंगे तो वहां पर तो रोशनी हो जाएगी। उसी प्रकार भगवान जो है सूर्य के तुल्य है, वो जहाँ पर जाते हैं वहां पर जहाँ पर कृष्ण होते हैं वहाँ पर माया नहीं होती, क्योंकि श्री कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण ताहार नाही माया अधिकार। अतएव भगवान श्री कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कलमश दूर हो गया और भीष्म देव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हो सके। अब श्री भीष्म देव ने समस्त इंद्रिय कार्य रोक दिए और दिव्य पद को प्राप्त होने के लिए समर्थ हो गए। मूलतः आत्मा तथा इंद्रियां दोनों ही शुद्ध हैं। भौतिक कर्म से ही इंद्रियां अपूर्ण तथा अशुद्ध बन जाती हैं, किंतु परम शुद्ध भगवान कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती हैं। श्री गोपाल जी यहाँ पर वास्तविक इंद्रियों की बात कर रहे हैं, जो हमारे जीव की वास्तविक इंद्रियां हैं, जो वास्तविक स्वरूप है वो शुद्ध है, लेकिन क्योंकि भौतिक संसार में आकर भौतिक कलमश से गिर जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है और इंद्रियां स्वयं को संतुष्ट करने की चेष्टा करती हैं, लेकिन वास्तव में जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो ज्ञानमयी है, वो शुद्ध है। उसके अंदर एक ही इच्छा है कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, तो यहाँ पर पुनः भौतिक कर्म से मुक्त हो जाती है। भीष्म देव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व ऐसी दिव्य अवस्था भगवान की उपस्थिति के कारण ही प्राप्त हो चुकी थी। भगवान सभी जीवों के नियंता तथा उपकारी है। समस्त वेदों का यह निर्णय है कि वे समस्त शाश्वत जीवों में परम शाश्वत जीव है। जैसा कि कठोपनिषद ने बताया, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विद्धाति कामनां। वो समस्त शाश्वत जीवों में शाश्वत हैं, जो नित्य हैं उनमें सबसे ज्यादा नित्य हैं और वे ही सभी जीवों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने परम भक्त श्री भीष्म देव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की सारी सुविधा प्रदान की। तब भीष्म देव ने इस प्रकार प्रार्थना प्रारंभ की। अब भगवान श्री कृष्ण ने उनको संपूर्ण और वो स्तुति जो भीष्म देव द्वारा की गई है वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।